Hospitality Pizza, the Fresh Garden Salad Bowl, Dessert and Kids Menu. Build your own pizza with unlimited toppings for only $14.95 plus tax. Find us in Hamilton, Oakville, Mississauga, downtown Toronto. Call and place your order today, 289-389-2050. For menu and location, visit doorbox.ca. Download Door app and earn points.
ऑटिज्म के साथ रहने वाला हर बच्चा मनफरीद है, इसी तरह इनके खानदान भी। एलिनो किड्स इस बात को समझते हैं, यही वजह है कि हम महफूज सीखने के माहौल में ऑटिज्म की वसी रेंज फराहम करते हैं और हम खानदानों के साथ मिलकर हर बच्चे को उनकी पूरी सलाहियत तक पहुंचने में मदद फराहम करते हैं। ब्रैम्पटन, मिसिसागा और ओकविल में हमारे मराकज के जरिए खिदमत दस्तयाब हैं। 20 साल से भी ज्यादा एलिनो किड्स आपके साथ रास्ते के हर कदम पर। पहला कदम है हमारी वेबसाइट को विजिट करना, elinokids.ca।
डाइवोर्स या कस्टडी की लड़ाई जिंदगी की सब तो औखी लड़ाई होंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स ना लड़ रहे होंदे हो जिस ना तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी की सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने ले या सलाह लेने ले आज ही SNS लॉयर्स नु कॉल करो 416-655-2000।
कोविड 19 करके सारा काम ऑनलाइन हो गया, ग्रोसरी ऑनलाइन हो गई, ट्यूशन ऑनलाइन हो गई, और ता होर कल मेनू रिया ने दसिया कि सोडी फर्नीचर वाले भी हुन ऑनलाइन फर्नीचर सेल कर रहे हैं।
बिल्कुल ठीक सुनिया, ते हुन इना दा स्टोर भी खुल गया है।
ब्रह्मजन दे सब तो वड़े फर्नीचर स्टोर्स विचो एक सोडी फर्नीचर ते हुन कोविड 19 दे दौरान इना दी वेबसाइट sodifurniture.com ते जाओ अते अपनी पसंद दा फर्नीचर सिलेक्ट करो। स्टोर विच आके सेम फर्नीचर देखो अते सेम प्राइस ते लो। इना दी कैनेडी लोकेशन हुन खुल चुकी है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 9058747171।
जब एक फोन बजता है तो आप इसका जवाब देते हैं। जब धुआं या कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म बजता है तो क्या आप जानते हैं क्या करना है? ये जानने के लिए कि धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म्स क्या हैं और क्या मुख्तलिफ अलार्म्स हैं, उनकी आवाज़ों का मतलब क्या है। एक चहचहाने वाले अलार्म चिपरिंग अलार्म की आवाज़ का मतलब है कि आपको बैटरी या अलार्म को तब्दील करने की जरूरत है। एक बीपिंग अलार्म का मतलब है कि बाहर निकलें, बाहर रहें, 911 पर कॉल करें। आप और आपके खानदान को brampton.com पर जाकर आग से जो हिफाजत के अलार्म्स हैं उसको जानिए, सीखिए और जानिए कि कीमती जान कैसे बचाई जा सकती है। आग से रोकथाम का हफ्ता इमरिच की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है।
आप सुन रहे हैं रेडियो साज आवाज ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 24/7। हमारी रेडियो और टीवी की सर्विस के लिए विजिट कीजिए eawaz.com या फिर आज ही eawaz ऑफिशियल ऐप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कीजिए। और अब वक्त हुआ चाहता है खूबसूरत और मालूमती प्रोग्राम का जो eawaz टीवी के लिए रिकॉर्ड किया गया। eawaz टीवी को आप तमाम IPTV बॉक्सेस पर देख सकते हैं।
जी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे फ्रॉम मुजफ्फर प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदेद। हम ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो आपके साथ मौजूद हैं और मेरे साथ हमेशा हुआ करते हैं काबिल एहतराम जनाब समीउल्लाह मलिक साहब, डॉक्टर समीउल्लाह मलिक, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपकी वेबसाइट bittertruth.uk जिसमें आप इनके कॉलम्स पढ़ सकते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जो आप प्रोग्राम करते हैं उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसा हमने पहले कहा कि हम आरिफा मुजफ्फर टोरंटो से, हमारी वेबसाइट पे आप जरूर तशरीफ लाइएगा www.eawaz.com। थोड़ा सा लाइटर मूड में, वो कहते हैं ना माँ को अपना काला कोजा बच्चा भी बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं अपने पे खुद कभी कभी हंसती हूँ बेख्तियार। अभी जब मैंने कहा ना कि bittertruth.uk आपकी वेबसाइट है जिसपे आपके कॉलम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, और जब हमने www.eawaz का बात की तो थोड़ी सी मोहब्बत ज्यादा निकली, जिसमें मैंने आपसे कहा कि जरूर विजिट कीजिए प्लीज, और अपने दोस्त अहबाब को भी फॉरवर्ड जरूर कीजिए, जिसमें मुकम्मल न्यूज़पेपर लेटेस्ट न्यूज से लेस आपको मिलता है। बहुत शुक्रिया हमारी टीम का और आप तमाम का। हमारी वेबसाइट eawaz.com, हमारा फेसबुक पेज जो है वो eawaz रेडियो के नाम से है। टोरंटो में तमाम लोग 770 AM फ्रीक्वेंसी पे इस प्रोग्राम को सुनते हैं। IP बॉक्सेस पे अगर आप उर्दू चैनल्स में जाएं तो अगेन eawaz के नाम से ये प्रोग्राम वॉच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। एनीवेज, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे لسنرز اینڈ ہمارے اسپانسرز کے تعاون سے بہت سے اچھے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے. آج بھی حسب معمول جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب میرے ساتھ ہیں اور اس وقت کے جو دنیا کے حالات ہیں ان کا تجزیہ فرمائیں گے. صاحب, دنیا کے حالات کی جب میں بات کرتی ہوں تو میرا دل بڑا دکھتا ہے, بھاری ہوتا ہے کہ نہ معلوم کس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں. آج اگر میں افغانستان کی بات کہوں تو افغانستان کی صورتحال آپ دیکھیے گا کہ افغانستان میں اب پھر ایک اور دھماکہ ہو گیا کابل ایئرپورٹ کے بعد. دس از اے سیکنڈ بڑا دھماکہ ہے اور اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب, ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور جس کے حوالے سے ایک پروگرام مسجد عیدگاہ کابل کی ہی مسجد ہے وہاں پہ یہ پروگرام جاری تھا. دھماکہ ہوتا ہے, ابھی دیکھتے ہیں اور کتنے لوگوں کی ڈیتھ سامنے آتی ہیں. ابتدائی اسٹیج پہ تو 12 یا 14 لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا تھا. یقیناً اللہ کرے کہ کابل کیوں اس کو سٹیبل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے. اگر کابل سٹیبل نہیں ہوگا تو خطے کا کوئی ملک بھی اور خاص طور پہ پاکستان اور ہندوستان. مزے کی بات یہ ہے کہ کابل کا نیکسٹ ڈور ہمسایہ, ہم مسلمانوں میں ہی ہمیشہ پرابلمز رہیں, تاجکستان جو ہے اس کا اب جھگڑا چل رہا ہے کابل کے ساتھ, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کابل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگین یہ قبائل کی جنگ ہے, کابل کو کبھی بھی تسخیر کرنا اتنا آسان نہیں تھا. ہزاروی قبیلہ, ازبک قبیلہ اور تاجک قبیلہ, یہ اب آگے کس طرف کو چلتے ہیں واللہ اعلم بالصواب. میرے ساتھ جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب ہیں. یقیناً اس ٹاپک کو ٹچ کرتے ہوئے ہم امریکہ کے کو ضرور کریں گے, کیونکہ امریکہ ہی چھوڑ کے آیا افغانستان میں کس صورتحال میں, اور آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اپنے امریکہ کے اندر کیا صورتحال چل رہی ہے. ان تمام کو ڈسکس کریں گے جناب سمیع اللہ ملک صاحب, اور اس کے بعد چائنا کی صورتحال پہ چل رہا ہے سی پیک, ون بیلٹ ون روڈ. جی سمیع اللہ ملک صاحب, السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ بارک اللہ فیک. جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں.
جی سر, آج اب آپ ہی سے سننا چاہتے ہیں. ہم نے تو تھوڑا سا بتایا کہ کابل افغانستان کی جو صورتحال ہے, اپنے لوگ مر رہے ہیں اور مارنے والے بھی بعض کلمہ گو ہیں جو پیسے کی خاطر کچھ کر رہے ہیں, مرنے والے بھی کلمہ گو ہیں, تو کیا ہوگا؟
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين يا رب العالمين. کروڑوں اربوں درود اور حمد و ثنا باری تعالیٰ کی زیادہ گرامی پر, اور اس کے بعد خاتم نبیین علیہ السلام کی زیادہ گرامی پر درود و کرم. ابھی میں نے سورہ ہود کی آیت 18 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اس کی مجھے توفیق ملی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے, ایسے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا. سنو, خدا کی لعنت ہے ظالموں پر. میں بہن اس میں تو کوئی شک نہیں, اگر مڑ کے دیکھتا ہوں تو اگر وہ حملہ کرنے والے خودکش ہیں تو وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے بم پھوڑ دیتے ہیں, خود کو اڑا لیتے ہیں, اور جو لوگ اس بم کی زد میں آتے ہیں وہ بھی شہید کہلاتے ہیں. عجیب ایک مخوصہ ہے ہمارے اندر. آپ کو یاد ہوگا تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ پچھلے دنوں آج سے کچھ چند مہینے پہلے آپ کے جو پروگرام تھا اس پروگرام کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ سی آئی اے کا ایک ڈائریکٹر, اس کا نام اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا, اس نے یہ کہا تھا, بقاعدہ وہ موجود ہے, اس نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے, میں اس نے کہا کہ میں امریکہ کے لیے اور مغرب کے لیے یہ بہتر ہے کہ بجائے وہ خود جنگ کرنے کے وہ ان ممالک کے اندر شیعہ سنی فساد کروائے, ایسے اور کام کروائے تاکہ ان کو ایسی جنگ میں مبتلا کیا جائے کہ یہ خود ہی دوسروں کو مار مار کے ختم کر دے. یہ ساری چیزیں اور بھی ہیں, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ خود کو حملہ کرنا جو جنہوں نے کیا ہے, اس میں دوبارہ اس میں काबुल के हवाई अड्डे के बाद ये दूसरा बड़ा हमला है, बड़ा खूनखार हमला है और बड़ा ही खौफनाक और धुनात दिल दहलाने वाला ये हमला है। दरअसल ये एक पैगाम दिया गया है दोबारा, वो जो दाश के लोग वहां पे बिठाए गए हैं और जिनको कहा, जिनको बकाया तौर पे जब हुक्म दिया जाता है तो वो अपनी कार्रवाइयां शुरू करते हैं, उन्हीं का ये फिर से एक और शाखसाना है। हमने पहले भी इस बात का खदशे का इजहार किया था कि क्योंकि हमें यानी ये पता है हम इस खत्ते के अंदर इस जंग को खत्म करके मुकम्मल तौर पर अमन चाहते हैं, तमाम ही खत्ते के ममालिक खा वो चीन हो, ईरान हो, रूस हो, पाकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, ये तमाम रियासतें, लेकिन इसमें से एक बात में जरा गौर करनी चाहिए कि ताजिकिस्तान के अंदर, उज़्बेकिस्तान के अंदर आज भी दो बड़े अड्डे हैं, एक हिंदुस्तान का अड्डा है और एक अमरीका का अड्डा पड़ा हुआ वहां पे। और ये उज़्बेकिस्तान जब ये तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान के अंदर गलबा हासिल शुरू कर किया था, खासतौर पर जब शिमाली इत्तेहाद के तमाम इलाकों को जब उस पर गलबा हो गया था, तो बहुत से तकरीबन 6,000 से जायद उज़्बेक जो थे उज़्बेकिस्तान में चले गए, पूरे असले के साथ चले गए थे। होना तो ये चाहिए था कि उज़्बेकिस्तान के जो मुल्क है, वो पड़ोसी मुल्क है, अमन की खातर वो बेशक इन्हें बतौर महाजरीन पना दे देता और जब हालात दुरुस्त होते तो फिर को वापस भेज दिया जाता, लेकिन यह कि उन्हें असले समेत ही उन्हें कबूल किया गया, वहां रखा गया। और मजीद शक ये किया जा रहा है कि वहां पे अफगानिस्तान के ऊपर कूके सर तालिबान का तकरीबन गलबा हो चुका है और वो कहीं भी ऐसी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई, और अफगानिस्तान में जो तालिबान है उन्होंने तमाम ममालिक से गुफ्तगू के बाद ये ऐलान किया है कि दोहा मादे के मुताबिक हम किसी हमारी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ना होने देंगे हम। वो तो अपने सवादे पे कायम है, लेकिन यह है कि अब उनको अंदर से डिस्टेबलाइज करने के लिए जो अवामिल हैं वो तो हैं, और इसके बाद इसके बारे में खदशात पहले भी जाहिर किए जा रहे थे और अब भी हैं। और मसला ये है कि अभी कुछ वक्त लगेगा, और वो भी समझते हैं कि भाई तालिबान को इब्तदाही के अंदर जितना कमजोर कर सकते हैं हम कमजोर कर ले, और उसके बाद उस पर वो अमल पैरा भी है। और दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के जो अपने छोड़े हुए अवामल और अनासर हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, उनकी भी अभी बेहकुनी पूरी तरह नहीं हो सकी और उनकी तरफ भी उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि आते ही आपको पता है कि तालिबान और हिंदुस्तान की भी आपस में बहुत ज्यादा बन गई है, ठन गई है। और खास तौर पर हिकमत यार साहब और तालिबान की तरफ से जो मुतालबे किए गए हैं कि अमर साले और अमर शाह मसूद का बेटा मसूद जो है वो दोनों जो है वो छुपे हुए हैं उज़्बेकिस्तान में या हिंदुस्तान में, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये शिकायत की है जो पिछले प्रोग्राम पिछले दो प्रोग्राम पहले मैंने बात की थी कि उन्होंने बाकायदा तौर पर रूस से भी इस बात की शिकायत की है कि अगर आप हमारे दोस्त अलाइज हैं, चाहते अमन हो, तो हम ये जो दोनों शख्स यहां से फरार हैं, ये हमारे मुजरम हैं, इन्हें हमारे हवाले किया जाए। हम इनके बारे में एक फैसला कर चुके हैं और वो फैसला उस फैसले पर अमल दरामद होगा, हम किसी सूरत भी इन दोनों हजरात को एग्जाइल हुकूमत बनाने की इजाजत नहीं देंगे, जिस तरह तिब्बत की एग्जाइल हुकूमत चीन के खिलाफ बनाई गई है, उसे चलाया जा रहा है, ऐसा होने नहीं देंगे। और अगर हमें पता चल गया तो ये उज़्बेकिस्तान में है या हिंदुस्तान में जहां भी है, फिर उनके खिलाफ हमारी खुली जंग है। और उसके बाद प्यूटन ने बकाया तौर पर यह वादा किया था, उसने कहा कि मैं खुद दौरा करूंगा या मेरा वजीर खारजा वहां जाके, हम ना सिर्फ इस मामले को खुद देखेंगे बल्कि ये जो अगर वहां पे अमर साले हुआ और उसका अमर शाह मसूद का बेटा अमर मसूद भी हुआ, हम दोनों को पकड़ के आपके हवाले करेंगे। ये नहीं कहा था कि हमने भी कुछ करेंगे, आपके हवाले करेंगे। अभी तक वो हवाले नहीं हुए, अभी तक ये मसला चल रहा है। और मोस्टली लोग ये समझते हैं कि उनको वो बकाया दोनों जो है उन्होंने हिंदुस्तान में अपना ले रखी है, उज़्बेकिस्तान में वो नहीं है, क्योंकि उज़्बेकिस्तान में रूस ने अपने अलाइज भेज के, अपने जो नुमाइंदे भेज के पता कर लिया है और वो हिंदुस्तान में है। गोया हिंदुस्तान जो है दरपर्दा अब भी अफगानिस्तान के अंदर जो है ओमन का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है, और किसके कहने में बना हुआ है ये आप भी जानते हैं। और आपको मैंने पहले भी कई दफा अर्ज किया था कि अमरीका अपनी इस शिकस्त को कभी भूल नहीं सकता, ना भूलेगा। और अगर आपको इसका तो आप देखिए, अभी चंद दिन पहले जो अमेरिका की सेनेट के अंदर 22 सेनेटर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ और तमाम वाले खिलाफ जो है एक करारदाद पेश कर दी है,
रिपब्लिकन
उसमें, उससे जो सेनेटर जिम रिश है उसने 22 सेनेटर्स के हमरा यानी बाइडन इंतजामी की जानब से अफगानिस्तान से ये जल्दबाजी में जो इंखलाब के फैसले हैं इसकी वजह से जो पैदा होने लगे मसाइल का जायजा लेने के लिए, जिसमें उसने अफगान तालिबान और उनकी मदद करने वाली हुकूमतों बिलखसूस पाकिस्तान पर पाबंदी का मुतालबा किया है, और उसने बिल बकायदा पेश किया है फिर मंगल, इस मंगल को यानी ट्यूजडे को अफगानिस्तान के खिलाफ काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट नामी बिल जो है उस शब्द में यह भी लिखा गया है कि अमेरिकी मेहमान खारजा से अफगानिस्तान से अमेरिकी शहरियों और अफगान स्पेशल इमिग्रेट वीजा रखने वालों अफराद को जो है मुल्क से जल्दी अफगानिस्तान से निकाल लिया जाए और उसके लिए हमें एक टास्क फोर्स भी कायम करनी चाहिए। अब जब टास्क फोर्स बताई जाती है फिर आप सोच लीजिए कि टास्क फोर्स को फिर वो कहाँ रखेंगे, कैसे लेके जाएंगे, सारी चीजें उसके सामने है। बाद में ये खुली दुश्मनी खुली जंग फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बिल में तालिबान के खिलाफ मुकाबले के लिए यानी तालिबान के पास अमरीकी जो साजो सामान असला जो रह गया कहा कि वो भी उसे वापस लिया जाए, उनसे मुतालबा कीजिए वापस किया जाए और आपको किसी भी शर्त की वो खिलाफ वर्जी करें फिर बकाया तौर पर सजा दी जाए और उस सजा देने के लिए उसके जो हामी मुल्क हैं और पाकिस्तान का नाम लेकर है जिनको भी सजा दी जाए। अब अमरीकी लॉबी ने जैसे मैंने किया था अफगानिस्तान में शिकस्त का मलबा जो पाकिस्तान पर डालने के लिए अमरीकी सैन्य जो बिल पेश करते हुए मुतालबा किया है कि भी 2001 से 2021 तक यानी 20 साल तक तालिबान को पनाह गाहों तरबियत मनसूबाबंदी इंटेलिजेंस मालूम और रसद की फरहमी और सुल्तकार और मदकरण जितनी भी रियासतें हैं उन अफराद की निशानदेही की जाए पहले फिर उन पर पाबंदियां लगाई जाए। फिर इसके साथ जो अगली शिक है वो ये है कि अशरफ गनी की हुकूमत गिराने में तावन करने वाले रियासती और गैर रियासती नजर के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया उन्होंने उस बिल के अंदर। फिर हरबी और स्ट्रेटेजिक समिति के तयन में भी किसने रहनमाई की तालिबान की और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे में जो शामिल अनासर का जायजा लेने की जरूरत पर भी जोर दिया गया और बिल में इस बात की भी रिपोर्ट मांगी गई है कि गुज़श्ता माह जो पंजशीर पर जो हमला हुआ था उस मुज़ाहमत के खिलाफ किसने तालिबान को कुमक फराहम की है। आप समझ गए होंगे इसके पीछे क्या चीज़ है, वो पाकिस्तान को रगेड़ना चाहते हैं। फिर इस बिल में अफगानिस्तान में इस दादे दहशतगर्दी के लिए मौसर इकदाम का मुतालबा और जो खसूसी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ पेश की गई है। मैं ये कहता हूँ कि बिल में इस सबसे अहम जुज उन अनाजर पाबंदी के मुतालबे का है कि जिन पर तालिबान को मदद फराहम का इल्ज़ाम है। इसमें बैरूनी हुकूमतें भी शामिल हैं और पाकिस्तान का नाम इसमें बिलखसूस तौर पर लिया गया है। अब आइए दूसरी तरफ अमरीकी फौजी कैद के शिकस्त खुर्दा बयान और वजाहतों पर आर्म सर्विस कमेटी के अरकान से इस कदर नाला और आग भगोला है वो लोग कि उन्होंने अपनी आला सारा फौजी कैद को इंतहाई सख्ती सवाल के टर में ला खड़ा किया है। अब जो कांग्रेस का जो रुकन है मेट गेट्स उसने फौजी कैद के जो जनरल मार्क मिली है उसमें जनरल केथ मैकिन्जी है और डिफेंस सेक्रेटरी लाइट ऑस्टिन है इन सबको जो है आप देख लीजिए उन्होंने बकाया तौर पर बुला लिया है, कैरन में बुला लिया। फिर उन्होंने बकाया तौर पर ब्राह्मण से मुखातब करते हुए पूछा उनसे कि क्या आप ये जंग लड़ने की हैली भी रखते थे, ये कितना सख्त सवाल किया उन्होंने। मतलब फिर अफगान जंग के लिए फौज पर जो हमारे बिलियन एंड बिलियन डॉलर खर्च हो गए हैं आखिर अमरीकी अवाम आप पर क्यों एतमाद करें। यानी इस तरह रिपब्लिकन सेनेटर जो मेट गेट्स का कहना था कि आप देखिए उसने फिर हवाला भी दिया उन्होंने कहा शाम में असद हुकूमत अब तक बरकरार है, अफगानिस्तान में तालिबान इंतजार में आ चुके हैं, आपने क्या किया। और उसके बाद देखिए कि वीडियो अब आम हो चुकी है, मैंने आपको भी वो क्लिप भेजा है, काश आप वो क्लिप को चला भी दें आप इस प्रोग्राम में। यानी अमरीकी वजीर दफा का कहना था कि शाम में हमारा उस जो वजीर दफा लाइट उसने कहा कि भाई हमारा शाम में हदफ दाश थी वो हमने कामयाबी से अर्जी कर लिया मगर अफगानिस्तान में हमने सिर्फ अशरफ गनी की हुकूमत की माली जिस्मानी और अखलाकी मदद की मगर वो शराब निकला फौरन वो ढेर हो गई सारी फौज में उनकी हुकूमत और खुद हमें कुछ कह के गया था अशरफ गनी अमरीका के अंदर वो अब्दुल्ला जो आए थे लेकिन जब उसने हमसे बगैर पूछे उसने वहां से अफगानिस्तान से भाग गया काबुल से भाग गया वो। अब अमेरिकन सेनेटर का कहना था कि हमसे बहुत बड़ा झूठ बोला गया। फिर साथ उन्होंने ये भी एक टाउच की कि अगर हमारा सदर ना समय ना होता तो आप सब लोगों को तब तक बर्तरफ कर देना चाहिए था अब तक। यानी उन्होंने ये बात भी की अपनी इसी बहस के दौरान अगर देखें कि वो जो सेकंड के डिफेंस सेक्रेटरी है लॉयड ऑस्टिन उसने अफगान जंग में करप्शन समेत मुतद गलतियों का भी एतराफ कर लिया है। उसने कहा कि जी हमने अफगान हुकूमरान में मदद दी है मगर हमें एक कौम नहीं उनको बना सकी। अब जो कमेटी के जो अरकान जो महासभा कर रहे थे उनका कहना था कि जंग का खात्मा इतना शर्मनाक होगा ये तो हमने सोचा नहीं था कभी। यानी हमें हमारी अमेरिका की तारीख में इसे सबसे बड़ी नाकामी के तौर पर याद रखा जाएगा, हम इस तारीख के इन औराक को कैसे बदल पाएंगे। अब जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली है जिसने बहुत पहले पाकिस्तान को आज से हफ्ता पहले पाकिस्तान को शदीद तर धमकियां भी दी थी उसका भी महासभा किया गया और उसने जवाब में कहा कि जी बात यह है कि दोहा मादे ने जो जो हमें दोहा मादा दोहा के अंदर जो मादा हुआ था उसने दस उस मादे ने दरअसल तालिबान को मजबूत किया है, बल्कि मजबूत से भी मजबूत तर कर दिया है। यानी जंग इन उन शरायत पर खत्म नहीं जैसा कि हम चाहते थे, ये उसने तस्लीम किया है। यानी यकीन अमरीका अफगानिस्तान में 20 बरस की जंग हार गया, ये उसके अल्फाज है। सडनली अमेरिका जो है 20 वर्ष की जंग में हार गए हैं। तालिबान ने अमेरिका पर हमला ना करने की शर्त तो पूरी की है लेकिन बाकी शरायत का एहतराम नहीं किया। लेकिन महल आप यहां यह भी याद रखें कि ऐसा ही संगीन इल्जाम तो अमरीका तालिबान अमरीका पर भी लगाते हैं कि उन्होंने उस मादे के बाद 1500 से जायद मरतबा दोहा मादे की खिलाफ वर्जी की है और उनके पास सबूत भी है। उन्होंने कहा कि हम ये सारे सबूत जो है अमरीका की अदालतों में पेश करने को मतलब कर सकते हैं। अब अमेरिका ने एक बार फिर अपने उसी घिसे पिटे इल्जाम को दोहराया है कि जी हमारी कौमी सलामती के लिए सबसे अहम यह है कि भी किसी टेररिस्ट ग्रुप के साथ तालिबान का कोई साबता या राबता ना हो, लेकिन हमें शक है कि शक है कि तालिबान का अभी भी अलकायदा से राबता है, उसके राबते खत्म नहीं हुए और उनकी वाबस्तगी जो है उनसे तर्क नहीं हुई। इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि हम आंखें खोलकर तालिबान की निगरानी करेंगे और जरूर करेंगे। ताहम ये इस तमाम यानी सफाइयों के बाद भी सेनेट के इस बिल के ऊपर पाकिस्तान को एक बार फिर अमरीका की जंग में इत्तेहादी बनने की बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।
सर वो तो खिजानी बिली खंबा नोचे, और वही मैं एक छोटी सी चीज होती है जिसको जवाब बनाने के बाद ट्विन टावर का वाकया हुआ था, उसके बाद बुश साहब ने आके कहा था वन वर्ल्ड वन मैप, ठीक मिडल ईस्ट की ईंट से ईंट बजा दी। मगर मैं वो कहते हैं ना कि अपने बच्चे का नुक्स देखिएगा, हम अपनी गलतियों के बारे में अगर नोट करें हम खुद कहाँ खड़े हैं, हम क्यों सबक नहीं सीख रहे।
हमें कैसी, मैं शुरू दिन से ये कह रहा हूँ कि हमें कैसी जंग में शामिल कर दिया गया है जो कभी भी पाकिस्तान की जंग नहीं थी। यानी आप देखिए अमेरिका की मदद करने में हमने 87,000 जानों की कुर्बानी दी, 160 बिलियन डॉलर के खतीर नुकसान के बावजूद पाकिस्तान को अमेरिकी इत्तेहादियों ने किस सजा के तौर पर मुद्दे इल्जाम ठहराया जा रहा है। पहले भी डूमर कहा जा रहा था, अब भी वही, अब तो बकायदे तौर पर नाम लेके उसे मुद्दे इल्जाम ठहरा दिया गया है और तमाम नाकामियों का मलबा जो है पाकिस्तान पर डाल दिया गया है। हालांकि खुद अमरीका ने 20 साल का अरसा गुजारने के बावजूद अफगानिस्तान में कोई मुस्तकम हुकूमत क्यों नहीं कायम की, उसके पास पूरे अख्तियार। अब उनके पास तो जदीद तरीन, वो कहते थे कि हमने अफगानिस्तान के जदीद तरीन 3.5 लाख फौज तैयार कर दी है। अब बताइए वो इतनी जल्दी कैसे खत्म होगी, क्या पाकिस्तान को खत्म किया, वो कैसे मोम की तरह पिघल गए सर, जबकि आप उनके पास दुनिया भर के जदीद असले के गोदाम भरे हुए छोड़ रहे थे असले के। अफगान एयरफोर्स का क्या बना जो आपने जहाज हेलीकॉप्टर वहां पर छोड़ा है, उनके पास जदीद तरीन यानी जहाज हेलीकॉप्टर जदीद असला मौजूद था, उनके मुकाबले में तालिबान के पास तो कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, जहाज नहीं है, उनके पास कुछ चलाने वाला भी नहीं है। अब आप जो चीजें आप छोड़ रहे हैं उनके पास तो वो पायलट भी नहीं है कुछ उनसे चला सके, उनके पास तो कोई टेक्नीशियन नहीं है कि उनकी निगरानी कर सके। अब ये हमें ये बताया जाए कि क्या अफगान आर्मी और एयरफोर्स की इस तरह खत्म होने में पाकिस्तान का कोई हाथ है जिनको आपने तैयार किया था। फिर पाकिस्तान से तालिबान की क्या को रहा करने का मुतालबा भी तो अमरीका ने किया था, आपने अमरीका ने कहा था कि इनको छोड़ो मुल्ला ब्रदर्स को सबको छोड़ो, पाकिस्तान ने क्या किया हुआ था। फिर दोहा में तालिबान से मुआहदा किसने किया, अमरीका ने किया ना, पाकिस्तान पीछे हट गया था, पाकिस्तान तो फ्रीक बना नहीं, उसने कहा हमारा काम था आप दोनों को मेज में बैठा देना, आप पिछले 3 साल से बाकायदा तौर पर हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि हम जंग से जान छुड़ाना चाहते हैं और तालिबान से हमारे मुज़ाकरात किया जाए, और पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से उनका आपके साथ मुआहदे आपने बैठाया। फिर आप पाकिस्तान ने आपको कह दिया था अब आप जाने और तालिबान जाने, दोनों अपनी अमन की जंग के बारे में जो अमन के मुताबिक जो करना चाहते हैं आप करें, आप दोनों ने किया। पाकिस्तान ने किसी मौके पे किसी स्टेज पे कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया आपके साथ। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो तालिबान वहां जो गए थे मुआहदे से पहले वाशिंगटन डीसी में, उसकी मेजबानी किसने की, खुद अमरीका ने की ना, अमरीका ने बुलाया था ना उनको तालिबान के नुमाइंदों को।
टाइम बहुत ही कम जल्दी से गुजर जाता है, मैं भी आपको एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ, आप अलग क्लिप भी दिखाएंगे, मगर आप यकीन कीजिएगा इस क्लिप से सबक सीखिएगा, प्रेसिडेंट बुश की आवाज है, प्रेसिडेंट बुश ने
जरूर दिखाइए।
एक हकीकत में दुनिया की एक सेइंग है जो वो शेयर कर रहे हैं, आप इसको समाज फरमाइए। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।
There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on you. You fool me, we can't get fooled again.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
उफ, घर लेना तो अब बहुत ही मुश्किल, अब तो सिर्फ तस्वीरें देख के ही घर ले सकते हैं।
लो भाई, तुम कॉल करो ना टीम हिना को और इंद्रजीत सजन को, उनके पास ब्रैम्पटन में अर्बन टाउन हाउसेस का प्रोजेक्ट है, 6 लाख कीमत है, 60,000 90 दिन में पे करना है, असाइनमेंट इसमें मौजूद है, लेवीज बिल्कुल कैप्ड है, इंटरसेक्शन मिसेस सागर और सैंडलवुड, $5,000 की बचत भी हो सकती है डेकोर डॉलर्स में। टीम हिना 416-993-6600
Do you have body and foot related issues? Or are you tired of sitting for long hours? Aapki tamam takleefon ka ilaaj hai hamare paas. Dairy Health and Wellness Center. Physiotherapy, massage, orthotics, chiropractor and acupuncture. We accept all major insurance plans. Appointment ke liye call kare 905-956-6330. Dairy and Airport Road, Main Intersection, Mississauga. www.dairyhealthwellness.com
कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ। हैरिसन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप तल्लुक आता है इनके, आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त दिया जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरिसन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं, बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा। $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं? कॉल हैरिसन Now 647-228-1000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
Asian Food Center 905-793-1338 आपके किचन की तमाम जरूरियात एक ही छत तले। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज एंड स्टिफल्स, ब्रेड डेयरी एंड एग, बेवरेज एंड कन्फेक्शनरी, ब्रांडेड फूड्स, पर्सनल केयर एंड हाउसहोल्ड, स्वीट्स एंड समोसास। Order now for in-store free pickup, 905-793-1338. Home delivery is also available. Asian Food Center, 905-793-1338. Asian Food Center.
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगे आसान। 11 साल से ज्यादा तजुर्बा और एक भरोसामंद नाम। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड, सेकेंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659 लाइसेंस नंबर 10530।
Ayyo, who is the stager?
Complete home furniture and appliances, latest style, color, fabric, golden ya phir silver, modern, traditional, contemporary furniture and decor. Complete home furniture and appliances. Must see, must visit a designer's collection and affordable price.
Seeing is believing. Complete home furniture and appliances.
No cost, free advice. 547 Steeles Avenue East in Brampton. 905-244-4663. 244-4663.
दांतों के इलाज के लिए डॉक्टर ने बिल बहुत ज्यादा बता दिया। सोचती हूँ बैक होम जाके दांतों का मुकम्मल इलाज कराऊं।
छोड़ो भाई, किंग बेस्ट स्माइल डेंटिस्ट्री को विजिट कर लो। दांत निकालना हो, क्राउन्स, ब्रिजेस, डेंचर्स, इम्प्लांट्स, बच्चों के दांतों का मुकम्मल इलाज, रूट किनाल ट्रीटमेंट और नए पेशेंट के लिए फ्री इलेक्ट्रिकल टूथ ब्रश भी है। कंसल्टेशन इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री।
पर जाना कहाँ है?
288 किंग स्ट्रीट वेस्ट हैमिल्टन में 905-521-0540
वेलकम बैक। और मेरे साथ डॉक्टर समीउल मलिक साहब यहाँ मौजूद हैं। bittertruth.uk आपकी वेबसाइट है। देखिए साहब, जैसे मैंने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में बहन मेरी को अपनी छोटी सी सोच है, छोटी सी मेरी दुनिया है, तो मैं ये कहती हूँ कि ट्विन टावर का एक वाक्या होता है, उसके बाद वन वर्ल्ड वन मैप, पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रह जाता है। और अभी आपने, ये वही जमाना था जब प्रेसिडेंट बुश हुआ करते होते थे, तो आपने वो क्लिप भी देखा। एनीवेज, एक और क्लिप भी मैंने आपको दिखाना है, ये भी बहुत खूबसूरत क्लिप है कि बॉम्ब्स की जब बात होती है, दुनिया की जब तबाही की बात होती है, मैं बार बार पिछले कुछ अरसे से जिक्र कर रही हूँ, और यकीनन हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, और अगर तारीख से इंसान सीखे ना तो फिर बहुत पीछे रहता है। कि बहरा ओकेनूस का जो पैक्ट होता है बिटवीन इंग्लैंड एंड अमेरिका, और जहाँ से पावर शिफ्ट होती है, हमें तो चीज़ों का पता ही बाद में चलता है, हकीकत क्या है, क्या हो रहा है, आम आदमी को तो पता ही नहीं चलता। मैं और आप मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं। अभी रिसेंटली आप देखिएगा, पाकिस्तान तो वैसे ही सोया पड़ा है, हम तो मतलब फंटूश कौम है, वैसे ही सोए पड़े हैं। आई एम सो सॉरी टू से, मैं आम आदमी को सुलाया किसने है? पॉलिटिशियन ने, फॉर देयर ओन बेनिफिट। मेरे पास एक और पीपल के क्लिप है, मैं वो भी कभी आपको अगले प्रोग्राम्स में सुनाऊंगी कि जो ड्रग्स थी, ड्रग्स कहाँ कहाँ फराहम की जाती थी और कौन सी कंपनियाँ थी, अमेरिकन कंपनियाँ थी, वो आज भी मिलियनर बिलियनर हैं, ठीक है, मगर क्यों ड्रग्स सप्लाई? ताकि दे मस्ट कीप ऑन स्लीपिंग। चाइना के लोग क्या थे? नशे की हालत में धुत पड़े रहते थे, और फिर वहाँ चेंज आया, उन्होंने पूरी एक नस्ल की कुर्बानी दी, और आज वो आप देखिएगा कौम कहां खड़ी हुई है। बॉम्ब्स का तबाही के अमेरिका का जब ये पैक्ट था तो शिफ्ट ऑफ पावर क्यों थी? क्योंकि अमेरिका कहता था कि हर मुल्क को राइट मिलने चाहिए, हर मुल्क के लोग, और जाहिरन वो ये कह रहे थे, हकीकतन वहां बॉम्ब्स की बरसात पूरी दुनिया में कैसे उन्होंने की। मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ, आप इस क्लिप को देखिएगा, उसके बाद मैं वापस आती हूँ जनाब समीउल्लाह मलिक के साथ।
By the fact that we have to stop bombing Muslim countries if we ever want to feel safe from terrorism in our own. The chemical weapons treaty is important, but to the jihadi on the street, it just looks like we're always looking for a new reason to bomb them. Even worse, bombing seems to be our answer for everything. Since 1945, when Jesus granted America air superiority... We have bombed Korea, Vietnam, Laos, Cambodia, Lebanon, Grenada, Panama, Iraq, Serbia, Somalia, Bosnia, the Sudan, Afghanistan, Pakistan, Libya, and Yemen. And Yemen only because the 10th one was free. How did we inherit this moral obligation to bring justice to the world via death from above? Are we Zeus? It doesn't make any sense. Our schools are crumbling and we want to teach everyone else a lesson. And look, I'm just pointing out that we're the only country in the world that muses out loud about who we might bomb next. Iran? Yeah, we might bomb you. Yeah, we're thinking about it, maybe. Depends on the mood. We did this with Iraq after 9/11, even though they had nothing to do with 9/11. We do it with Iran every day, and now it's Syria's turn. We're like a schoolyard bully who's got every kid in the class nervous they're going to be next. And I don't know if anybody should have that kind of power. Can you imagine going to work and sitting at the table with the lunch with 10 different people in front of you and saying, hey, you think we should kill Bob? Well, it would send a message to Steve. Who acts like this? People in other countries don't talk like this. Probably because if they did, we'd bomb them.
जी साहब, आपने ये क्लिप देखा। एक्चुअली जो यंग जनरेशन है ना, वो तो बॉम्ब्स के और झगड़ों के अगेंस्ट है, मगर ये जो सोशल मीडिया है, इसने नफरतों को परवान चढ़ाने में बड़ा रोल प्ले किया। आप देखिएगा कि मुल्क जो टेक्निकली अपने लिए काम कर रहे हैं, वो तो पूरे पूरे अखबार की कॉपी शाया कर देते हैं। दिखाया था ना हमने आपके मोदी साहब के, ही इज द ओनली होप ऑफ द वर्ल्ड, मगर आई एम सरप्राइज कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसको सू क्यों नहीं किया, किसने ये अखबार छापा। एनीवेज, मैं वापस लेके, ये तो मेरा एक چھوٹی سی دنیا تھی جہاں سے میں نے آپ کے ساتھ دو باتیں شیئر کر دی. ینگ جنریشن جس میں میرا اپنا بیٹا بھی ہمیشہ مجھے کہتا ہے کہ وائی یو گائز ڈونٹ لرن فرام دا ہسٹری, مگر دیز آر دا پالیٹیشنز ہو ڈیوائڈ اینڈ رول, دیز آر دا گورنمنٹس ہو ڈیوائڈ اینڈ رول, بٹ انفارچونیٹلی وی آر دا وکٹمز ہو جو ان چیزوں پہ یقین کرتے ہوئے ہم اپنے یعنی پالیٹیشنز اوپر اکٹھے ہیں, ہم آپس میں ان پالیٹیشنز کی خاطر لڑ لڑ کے مرتے چلے جا رہے ہیں. آج پھر وہ ایک پیپرز آ گئے ہیں جس کے بارے میں پھر جب دنگا فساد, حالانکہ اردن کا نام اس میں ہے, برطانیہ کا نام ٹونی بلیئر صاحب کا اس میں ہے, کینیا کا نام اس میں, دنیا کے بے شمار, ایکواڈور کا, رشیا کا, تمام ممالک کا نام ہے, مگر وین آئی ریڈ دس پیپر آئی ایم سوری یار پالیٹیشنز آر انوالو, بٹ آئی واز ہیپی کہ پاکستان کی جو پرائم منسٹر ہے اس کا نام اس میں نہیں تھا. باقی خاندان میں تو انسان سگے بہن بھائیوں کی بھی قسم تو نہیں کھا سکتا. اینی ویز پولیٹیکل دنیا میں جو چینج آتا ہوا, دنیا پوری کے نقشے کو بدل رہا ہے. سمیع اللہ ملک صاحب بھی ہمیں بہتر اس کے بارے میں انفارمیشن دے سکتے ہیں. الحمدللہ آر ہوپ از سی پیک اور چائنا کس طریقے سے بڑھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس کے بارے میں روشنی ڈالیں تو بڑی مہربانی ہوگی.
بہن آپ نے بڑا خوبصورت پھر سے انٹرو دیا, اور خاص طور پہ آپ نے جو ینگ جنریشن کی جو ذکر کیا تو میں اس بات کو فلی طور پہ انڈورس کروں گا. کہ یقین کیجئے کہ میرا بھی جب سامنا ہوتا ہے ینگ سے تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کتنا اسٹریٹ فارورڈ, کتنے سچ کے ساتھ وہ اپنی دل کی باتیں بتاتے ہیں. اور وہ ہم لوگ جو ہیں ہم نے تو ٹو فیس رکھے ہوئے ہیں, دو بلکہ کئی کے چہرے رکھے ہوئے ہیں, کبھی کسی سے کچھ کہتے ہیں کبھی کسی سے کچھ کہتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسی نوجوان نسل ہے جو کہ بڑی سچی اور کھری بات آپ کے منہ پہ کہتی ہے, اور جس میں آپ کا بچہ بھی جس سے آپ نے ذکر کیا تھا اپنے آپ کا بیٹا بھی ہے, تو میں اس کی بات بالکل صحیح صحیح سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ جو محسوس کرتے ہیں اور جو حق ہے سچ سچ ہے وہ آپ کے سامنے بڑی کھری باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, کھلی کتاب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اب میں پہلے جو اس پروگرام سے پہلے جو بات کر چکا ہوں اس میں میں سینیٹرز کے یعنی ایک دو فکر کہنے کے اس پروگرام اس موضوع کو ذرا پیک اپ کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہمارے آپ نے کہا تھا کہ ہماری کیا ڈیوٹی ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم جیسا ہم نے شروع کر دیا ہے کہ ہم امریکہ کو واضح طور پہ پیغام دے بھی دیا ہے, انف از انف, اور وہ طاقتیں جو افغانستان میں تھیں اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان پر الزامات لگانے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکے, اپنے گھر میں جھانکے. انہوں نے 20 سال میں کیا کیا مطلب ہے. پھر اب آئیے میں تھوڑی سی ایسی
سر وہ بیچاری کیسے جھانکے آپ ہی تو بتائیے نا کہ اب 15 اکتوبر کو کیا ہونے جا رہا ہے.
چلیے میں ہونے یہ جا رہا ہے کہ میری نظر میں یہ جو بل ہے امریکہ کی اپنی مقامی سیاست کے پس منظر میں پیش کیا گیا ہے. کیسے؟ ریپبلکن پارٹی اگلے 1 سال میں ہونے والے جو مڈ ٹرم الیکشن ہے اس کا سوچ رہی ہے, اور دوسری بات یہ کہ ابھی اس بل کی حمایت میں صرف 22 ممبران ہیں, اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ریپبلک جو ہے وہ اس کے اور کتنے ممبران اس کی حمایت کریں گے, اور کیونکہ یہ بل کافی مبہم ہے, اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آگے کیا ہوگا اور کب کچھ ہوگا. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ 9/11 کے بعد سے امریکہ میں خارجہ پالیسی پہ کام کرنے والوں کے ذہنوں میں پاکستان کے لیے ہمیشہ سے جارحانہ اور منفی تاثرات رہے ہیں, لیکن اس وقت کے بعد سے آنے والی تمام امریکی حکومتیں جو ہیں پاکستان کی اہمیت کو, جغرافیائی اہمیت کو بھی سمجھتی ہیں. یقیناً امریکی حکومت پاکستان پر حد درجہ دباؤ ڈالے گی, چھوڑیں گے نہیں وہ آپ کو, لیکن یہ بہت ممکن ہے کہ وائٹ ہاؤس اس بل کی وجہ بتاتے ہوئے پاکستان کو اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے پر بہت زیادہ مجبور کرے, کیونکہ بہت سے ٹولز ان کے پاس ہیں, اس میں ایف اے ٹی ایف کی تلوار بھی ہماری گردن میں رکھی ہوئی انہوں نے ابھی تک, اور پاکستان کی کمزور وکٹ کا استعمال تو یقیناً کریں گے اپنے مفاد کے لیے. وہ کمزور وکٹ نہ بھی ہو تو وہ آپ کو کمزور کرنے کے درپیہ ان کے پاس 100 اور چیزیں ہیں. لیکن جو بائیڈن انتظامیہ جو یہ کہہ سکتی ہے, جو میں نے اپنے انٹرنیشنل پروگرام میں بھی یہ باتیں کہی ہیں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب پاکستان کہے گا کہ ہم نے تو آپ کے الائز ہم نے یہ کیا وہ کیا, اس کے جواب میں وہ کہیں گے دیکھیں بھائی یہ بل تو ریپبلک نے پیش کیا ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن آپ ہمیں بتائیں, وہ پاکستان سے کہیں گے اچھا پھر آپ ہمیں بتائیں آپ ہمیں کیا دے سکتے ہیں تاکہ ہم اس کی مدد سے اس بل کو روک سکیں. یہ ان کی چالاکی ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں, جو پہلے بھی انہوں نے کی ہے. بہن اب تو جو عالمی تجزیہ نگار ہیں وہ بھی یہ برملا کہہ رہے ہیں کہ بھی پاکستان اور امریکہ نے جیسے تیسے ایک دوسرے کے ساتھ نہ دو دہائیاں تو گزار لی جو افغانستان میں جو ہوا ہے, लेकिन अब क्योंकि अमेरिका जो है चीन को अपना बड़ा बहुत बड़ा दुश्मन समझता है, हाल ही में उसने चीन के खिलाफ पहले क्वाड बनाया, उसके बाद इंतहाई राष्ट्र प्रदान करते हुए उसने बरतानिया से ऑक्स की तश्कील भी दे दी, जैसा आप पिछले प्रोग्राम हमने इसका जिक्र भी किया, अब ऑस्ट्रेलिया को एटमी जंगी आप दोनों से मुसल्लक करने का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसको चीन ने बड़ा संजीदगी से लिया है और उसने ऑस्ट्रेलिया को बड़े खुले लफ्जों में तब्दील की है। उसने कहा भी इंडो पैसिफिक खत्ते में हम ऑस्ट्रेलिया को बड़ा दुश्मन समझते हैं जो कि उनका टूल बना हुआ है अमेरिका और बरतानिया का। और इस हवाले से आप पाकिस्तान के, आप जानते हैं चीन के इंतहाई गहरे रिश्ते हैं, सी पैक की वजह से पाकिस्तान और चीन के मफादात यकसा हैं और आगे और सी पैक की अहमियत बढ़ने वाली है। वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मनसूबा है और वो इस सी पैक से मुंसलिक है, और चीन से सारे यूरोप की मंडियों के साथ जो है चीन के बराह रास्त रास्ते भी शुरू इससे हो जाएंगे, और इसी से सी पैक के जरिए अफगानिस्तान के रास्ते रूस और उसकी जो छह दूसरी रियासतें हैं उनके साथ बराह रास्त जाना शुरू हो जाएगी। इन रियासतों का जो बेपनाह तेल है, मादनियात के जखायर है, ये अपने इस रास्ते से दुनिया तक पहुंचाएंगे, इनकी तजारत होगी। खुद अफगानिस्तान के अंदर अमरीका कहता है कि हजारों बिलियन डॉलर की मादनियात है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लिथियम के जखायर न सिर्फ इस अफगानिस्तान की यानी अफगानिस्तान के अंदर है, बल्कि ये तो अफगानिस्तान के कंट्रात को, इस मीशत को, तमीर तरक्की को ऐसा बूम देंगे कि अफगानिस्तान के नया अफगानिस्तान बन जाएगा इसके साथ। और खत्ते के इन तमाम मालिक जो है आप देखिए मगरबी कर्जों के नीचे फंसे हुए हैं, और लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, ये भी आप देखिए। अब इस सी पैक से तमाम इन खत्ते के जो ममालिक हैं इनको मगरबी कर्जों से भी, इलाज से भी छुटकारा मिल जाएगा। फिर ये IMF और वर्ल्ड बैंक ये कहां जाएंगे, दुश्मनी को छोटी सी थोड़ी थोड़ी है, मतलब है अमरीकी और मगरबी तसल्लुत से जब इससे संसद की जान छूट जाएगी तो फिर तो अमरीका यही तो चाहता है कि ये किसी मेरी तसल्लुत के अंदर रहे। अब इन हालात में जबकि अमरीका जो है पाकिस्तान से किस मुंह से वो दोबारा तावन के लिए दबाव डालेगा। अब दूसरी बात देखिए, पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत है, उसकी झोली में तो अमरीका ने सबको डाल दिया, और पाकिस्तान ने अभी तक अमरीका को तो हर मौके पर खूब इस्तेमाल किया, यही हमारी बदनसीबी है। बावजूद सही दोस्ती का हाथ आज तक नहीं पकड़ सका पाकिस्तान का, फायदा उसने पाकिस्तान से उठाया है और नवाज वो हिंदुस्तान को रहा है। इसलिए फ्यूचर के अंदर मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के मुस्तकबिल के तलकात जो है बड़े गैर यकीनी नजर आते हैं। पाकिस्तान अमरीका की साथ चलने को तैयार नहीं है, हमने देख लिया बार बार, मैंने कई दफा फ्रेंड्स नॉन मास्टर का जिक्र किया ना, आप देख लीजिए कि अमेरिका हमेशा उन्हीं का सर कलम करता है जो उसके दोस्त होते हैं। अमेरिका का ये काम है, अमेरिका के अंदर ही ये डिस्पोजल क्रॉकरी शुरू हुई थी, वो तो हर काम को डिस्पोजल में बना देते हैं, फायदा लिया उसने फेंक दिया। अब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद से पाकिस्तान की जानब से मतलब पाकिस्तान जो है आलमी रस्म मुतालबा कर रहा है बार बार, कभी आप तालिबान की हुकूमत को वक्त दें, आप वक्त देने के बाद उसे कुछ उसकी मदद करें, उसके बाद फिर उससे मुतालबे करें। उससे अभी देखिए ना, रिसेंटली जो दुशंबे में जो कॉन्फ्रेंस हुई है बहुत से ममालिक की, 36 ममालिक की, उसमें इमरान खान ने यही तो कहा है, उसने कहा कि मैंने तालिबान को ये खुद कहा है कि तो आपकी हुकूमत तमाम ग्रोहों की नुमाइंदा हुकूमत होनी चाहिए, जिसमें आपने शुरू में जिक्र किया था, जिसमें ताजिक है, हजारा है, उज़्बेक है, कि भाई इनको सबको शामिल किया जाए। और तालिबान से उन्होंने इमरान ने कहा कि मेरी तो बकायदा मुज़ाकरात इत्तला शुरू भी कर दी हमने अपने सफीर के तो इस तालिबान से। मेरी अब इत्तला जो अच्छी इत्तला मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि तालिबान ने इस तजवीज़ की पिजीराई की है और जल्द उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि जल्द ही इस पर जल्द कोई आपको इस पर कोई होता हुआ आपको नजर भी आएगा। और यही वजह है कि सुहेल शाहीन ने दोहा से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो इंटरनेशनल मीडिया को बताया, उसने कहा कि हम बहुत जल्द जो है इन तमाम कबायल से मिलकर इनको अपनी हुकूमत में शामिल करने की दावत देंगे। अब जरूरत तो इस समय की है ना, जैसे मैंने पहले कहा कि आलमी बरादरी जो है तालिबान को वक्त और वसायल मुहैया करे, तो फिर तालिबान से अपने वादों पर अमल दरामद के लिए जोर डाले। एक तरफ तो आपने उनके जो जखायर है वो जब्त कर लिए हुए, दूसरा आप उनको वक्त देने को तैयार नहीं है, तीसरा अभी एक बम धमाका मस्जिद में कर दिया आपने, दाश को आप वहां लेके गए थे और वहां भी दाश की जो है पजीराई कौन कर रहा है, कौन लेके गया था दाश को बताइए ना, मतलब
बड़ी दफा कहा है कि इन तमाम एजेंसीज को हमने बुलाया था। गम की बात जो वो है ना वो ये है कि चलिए आज हमारे इंडिया ने भी ये कह दिया है कि ज़्यादा दहशतगर्द ठिकाने पाकिस्तान में होंगे, मगर उनकी फंडिंग कौन कर रहा है, पैसे कौन दे रहा है, रिलीजन के लिहाज से जो हमारे ग्रुप्स बनते जा रहे हैं कौन फंडिंग कर रहा है इन लोगों की, کس کے مفادات ہیں اس چیز کو ایکسپوز ہونا چاہیے. باقی تو یہ دنیا کی سیاستیں کہاں سمجھ آتی ہیں, ہمیں تو خاندان کی سیاست نہیں سمجھ آتی تو ہمیں دنیا کی سیاست کہاں سمجھ آئے.
انہوں نے ہم پہ ایک ریل الزام لگایا کہ جی پاکستانی جو افغان طالبان ہے پاکستان کی ہمیشہ حمایت کرتا رہا ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس چوائس کیا تھی, آپ مجھے یہ بتائیے. آپ نے ہندوستان کو اپنی گورنمنٹ,
یہاں پہ آپ بھی ان کلپس کو ساتھ لگائیں نا جس میں جناب رونلڈ ریگن نے آپ کو بتایا کہ کھڑے ہو کے ان کو ویلکم کیا گیا تھا, یہ جو مجاہدین ایگزیکٹلی. تو پھر اگر آپ, کیونکہ میں اگر کہوں گی تو کوئی سمجھے گا کہ بھائی میں کہہ رہی ہوں, مگر پریزیڈنٹ ریگن نے جب ان کو بلایا تھا ان کی کابینہ نے کھڑے ہو کے ان کا خیر مقدم کیا تھا جن جہادیوں کو پلانٹ کیا گیا تھا. مگر سر کس کے ساتھ گلا کر رہے ہیں آپ, کون تھے وہ؟ مسلمان تھے, کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ مسلمان کے اگینسٹ لڑ رہے تھے. کیوں نہ مسلم, آپ کی مسلم کانفرنس جو تھی, مسلم امہ اکٹھے ہو کے بیٹھ کے اپنے گھر کے مسائل کو خود کیوں نہ حل کیا؟ کیوں مغرب کو انوالو کیا؟ بیکاز ڈالر واز دی بگیسٹ انسینٹیو. بہرحال یہ دنیا نے ایسے ہی لڑتے جھگڑتے مرتے ختم ہو جانا ہے. اللہ کرے کہ کوئی بہتر حال ہمیں نظر آ جائے. سی پیک کے بارے میں تھوڑی سی آپ خبر دے دیجئے گا کہ چائنا کو جتنا بلاک کر رہے ہیں, مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں اگر بہت خاموشی ہو جائے تو وہ طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے, اور زمین میں اگر لاوا ابل رہا ہو اور اگر پانی یا زمین کی سطح اس کو ابلنے کا یا باہر نکلنے کا جگہ نہیں دیتی تو اتنا شدید زلزلہ آیا کرتا ہوتا ہے. تو تھوڑی سی کوئکلی اگر آپ چائنا کی بات کر لیں کہ چائنا کا جو سی پیک اینڈ ون بیلٹ ون روڈ, اس کا تھوڑا سا ذکر کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی, کیونکہ ٹائم کے بھی ہمارے پاس قلت ہے, ہمارے پاس 5-7 منٹ اور ہے.
دیکھیے بہن, پہلے میں ایک فکرہ کہہ دوں, پھر اس کی جو جس ٹاپک آپ کہتی ہیں اس کی سمجھ آ جائے گی. یہ طے ہے کہ امریکہ اس خطے کو مکمل طور پر روس اور چین کے حوالے کرنے کو کبھی تیار نہیں ہوگا. وہ بالکل وہ کرے گا. اب آئیے میں سی پیک, کیسے سی پیک کی اجازت دے گا؟ یہ سی پیک تو بنے گا جن لوگوں نے سی پیک شروع کیا ہے, جن لوگوں نے ون روڈ ون انیشیٹو شروع کیا ہے, انہوں نے ان کے ذہن میں یہ چیزیں تھیں کہ اس کے مخالف کون کون ہوں گے اور کیسے کیسے مخالفت ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کواڈ کا بننا یا آکس کا بننا ان کے نالج میں نہیں تھا؟ تھا ان کے بے, انہوں نے تمام چیزوں پہ غور کر رکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ چین جو کہ اس میں بہت بڑا ہائی انویسٹر وہی ہے اس معاملے میں, اس نے بھی دفاعی طور پہ بھی بہت سا کام کر رکھا ہے. اپنے پچھلے پروگرام میں ایک بڑی اچھی بات کہی تھی اور اس پروگرام کو میرے جو مجھے جو ریمارکس ملے ہیں بہت سے لوگوں نے آپ کی اس بات کی بڑی حمایت کی. اس نے کہا کہ یہ تو وہ چیز ہیں جو آپ نے چین کی بتا دی, جو چین نے آلریڈی دنیا کو میڈیا کو بتا رکھی ہیں, لیکن ان کے بارے میں جو کہ چین نے کسی کو بتایا نہیں وہ کیا کچھ ہے. یہ واقعی ایک بڑا, میں نے سوچا آپ کی اس بات کو انڈورس کیا تھا, میں نے کہا کہ آپ نے بڑی بات کہی ہے. لازمی بات ہے کہ چین نے, جیسے امریکہ نے بہت چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی تھی, چین کے پاس بھی بہت کچھ ہوگا. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم دنیا ایک نئے ایٹمی خطرات کی طرف جا رہی ہے, دنیا کی تباہی ایک نئے سرے سے شروع ہوگی. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو آج بڑے چیمپئن بنتے ہیں انسانی حقوق کے, یہ کیا بھول گئے کہ کل انہوں نے ناگاساکی اور ہیروشیما پر کیا 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 ان کا حال کیا تھا, کہ اگلی اور ایک صدی جو ہے وہاں کے بچے جو معذور پیدا ہوں گے وہاں پہ, وہاں پھر شہروں کا کیا کیا؟ آج تک وہ شہر آباد نہیں ہو سکے. وہاں پہ وہ باغات لگا رہے ہیں, پودے لگا رہے ہیں تاکہ اس کی چیزیں ختم کی جائیں, لیکن یہ ہے کہ جب اس کی تاریخ سامنے آتی ہے, اب اس کو تاریخ کو بڑا گٹمٹ کیا جا رہا ہے لیکن تاریخ تو گٹمٹ نہیں ہونے دیتی. جو اچھے مورخ ہیں خود امریکہ میں بیٹھ کے وہ خود لکھتے ہیں, ان کا اس کا چہرہ دکھاتے ہیں. اب آئیے سی پیک کی طرف. سی پیک 75% تقریبا مکمل ہو چکا ہے. ایکچولی تو وہ اسے آپریشن ہو جانا ہے بڑی جلدی, بہت تیزی سے ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو لازمی بات ہے کہ جب یہ ماحول بنے گا, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی سیکورٹی کے بھی زیادہ چانسز, سیکورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے, بڑھ بھی گئی ہے, اور یہ بنتا بھی ہے کہ سیکورٹی بڑھائی جائے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ اب پاکستان کے اندر, کیونکہ رشیا کے ساتھ جو 6 اسٹیٹس ہیں جو رشیا سے آزاد ہوئی ہیں ان کے ساتھ بھی سی پیک نے کنیکٹ ہونا ہے. اس کے اوپر چین نے بقایا طور پر افغانستان کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں اور جو ہونے جا رہے ہیں, مطلب وہ بقایا طور پہ ابھی تو وربل معاہدے طالبان سے ہو چکے ہیں کہ وہ افغانستان نے خود چین کو دعوت دی ہے کہ آپ ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کریں, ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں, اس کی حفاظت کی گارنٹی دیتے ہیں آپ کو ہر طرح کی. اس کے بعد پاکستان کے اندر سے باقاعدہ ایک ریلوے لائن ہے جو کہ جائے گی پاکستان سرحد سے ہوتی ہوئی افغانستان سے گزرے گی. और उसके अंदर क्योंकि अफगानिस्तान जो एक लैंड लॉक कंट्री है, उसके साथ कोई समुद्र नहीं है, कोई बंदरगाह नहीं है, इसलिए सारी तजारत जो है वो सड़कों और ट्रेन के जरिए होगी। और ट्रेन को सबसे मुफीद और सस्ता एक ट्रांसपोर्ट जरिया है, इसलिए ट्रेन पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। आप जान दिए कि सारे रूट के अंदर पहाड़ी पहाड़ बहुत हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और चाइना के पास ऐसी तकनीकी महारत मौजूद है। तो पाकिस्तान इससे पहले शायर रेशम, पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर शायर रेशम बना चुके हैं, जो कि दुनिया का एक अजूबा गिना जाता है। इसलिए हमारे लिए तो ऐसा मसला नहीं है। एक तो ये चाइना एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ये शुरू कर रहा है जिसकी इसको तकलीफ है। उधर चाइना ने ईरान के अंदर $460 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। पाकिस्तान का जो 64 बिलियन का जो मादा था वो 84 बिलियन तक पहुंच रहा है, और पाकिस्तान इसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है। पाकिस्तान के अंदर भी LRA एक और ट्रेन का सिस्टम तैयार किया जा रहा है चीन की मदद से, कराची से लेकर सरहद तक, और ग्वादर को भी साथ से कनेक्ट किया जाएगा। ये बहुत बड़े बड़े मनसूबे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, बल्कि जो तैयार हो चुके हैं और उन पर अमल शुरू होने जा रहा है। उसमें बकाया तौर पर बहुत तेजी से काम होगा और शवरोज उसमें काम होगा। अगर आप मुझे ये बताइए कि अगर जंग के खतरात को वो केटर ना करें तो कैसे बना सकते हैं? लाजमी बात है कि उसका बंदोबस्त जरूर है, जरूर होगा। हमारी आंखों से ओझल कुछ चीजें होगी, लेकिन जब वो ग्राउंड पे आएंगे तो सब चीजें देखेंगे और होगा भी ऐसा। गोया अमेरिका भी समझता है और चाइना भी समझता है जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है। और चाइना, आपको पता है आज तक की हिस्ट्री, जो पिछले कम को 70-80 साल की मेरा जो मुशाहदा इनको देखने का इनको हिस्ट्री है, चाइना नेवर कीप देयर फीट इन द मड। वो कभी भी ऐसा काम नहीं करता। अगर उसे बहुत ज्यादा खतरा होता, वो खतरे को उसे पता है कि मैं तमाम खतरों का मुकाबला कर सकता हूं, इसलिए उसने अपने इस्तियाती मादे जो है नए शुरू करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। उसके बाद ये है कि वन रोड वन बेल्ट के अंदर जो है बगैर तौर पर यूरोप के तारा सारा यूरोप उसमें शामिल हुआ था, और यूरोप के तमाम कायदीन और जो सरबराह थे वो उसमें शामिल हुए थे उस मीटिंग के अंदर, और बगैर तौर पर उसमें दस्तखत हुए थे बगैर। और ये आइंदा चीन ने यह साबित कर दिया है कि आइंदा सुपर पावर वो होगा जिसके पास मुआशी मंडियां ज्यादा होंगी, और उसी काम पे चल रहा है। और यूरोप को उसने ये बात समझा दी है। यूरोप ने कहा है कि बेहतर तरीका यह है कि आप मुआशी तौर पर दूसरे को मजबूत करें, आप किसी का हक ना खाएं, किसी के घर के मामलों में मुदाखलत ना करें, किसी को डिसिप्लाइज ना करें, किसी को मतलब उनके मामला घर के मामले में दखल ना दें, क्योंकि जब आप किसी और के मामले में दखील होंगे तो वो भी लाजमी आप में दखील होंगे। तो वो जो ये फिर जब मुदाखलत का सिलसिला शुरू होता है तो फिर तालुकात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, फिर तजारत आप नहीं कर सकते। फिर ये है कि जब तजारत शुरू होगी तो लोगों के अंदर भी एक भाईचारा पैदा होगा। भाईचारा जो वहीं पैदा होता है जहां पर अमन ज्यादा हो। इसलिए अगर आप ये देखें तो तजारत के जरिए कई चीजें हम अचीव करेंगे, कई गोल हम जो है अचीव कर लेंगे। सबसे बड़ा गोल जो है वो अमन का है। इस दुनिया को अब अमन के रास्ते पे आना है। एक अरसे से, अब मैं भी 70 साल का होने को जा रहा हूं, मैं जब से मैंने आंख खोली है मैं यही देख रहा हूं, मारामारी देख रहा हूं। हर रोज जब खबरें सुनता हूं तो ये होता है फलां पे हमला हो गया, फलां वो कर दिया, यहां बम धमाका हो गया, यहां प्रदूषण फट गई, यहां कर गए, वो कर गए। आप यकीन कीजिए, हमें अब सब ने बहुत संजीदगी सोचना शुरू कर दिया है कि हम अपनी आइंदा नस्लों को क्या देने जा रहे हैं।
हम कुछ भी नहीं देके जा रहे हैं, हम सिर्फ फसाद और जंग देके जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब समीउल्लाह मलिक साहब, जिंदगी तो इसी कश्मकश और जद्दोजहद में गुजर जानी है। इट इज सैड कि जब मैं ममालिक की सियासत को देखती हूँ तो वहाँ भी मारा मार
किया है कि नौजवान आप देख लीजिए कैसे सोचते हैं। नौजवानों ने बकायदा तौर पर नौजवान पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, और हमारे जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, आज सोशल मीडिया है। इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया की बहुत सी बुराइयां भी हैं जो कि बर्बाद कर रही हैं, लेकिन वहां पे सोशल मीडिया को ये दाद भी देनी पड़ेगी कि वहां हमें नौजवान नस्ल के टैलेंट का भी पता चल रहा है जो कि मुस्बत तरीकों से काम कर रहे हैं तमाम दुनिया के अंदर। सिर्फ ये नहीं कि हमारा, तमाम दुनिया के अंदर मुस्बत तरीके से भी काम हो रहा है। हमारा हक ये बनता है कि हम जो मुस्बत तौर पे काम हो रहा है, जो अमन के लिए काम हो रहा है, जो इंसानियत के लिए काम हो रहा है, हम उसको प्रमोट करें।
बहुत शुक्रिया समी भाई, बहुत शुक्रिया समी भाई। जब मैंने आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त देते हैं, जब ये प्रोग्राम शुरू भी किया था तो मैं अक्सर टॉक शोज देखा भी करती हूँ, सुना भी करती हूँ, तो मसाइल की तरफ निशानदेही की जाती है। मेरा दिल हमेशा से ये था कि मसाइल के साथ उनका हल का जिक्र होना चाहिए। मसाइल का तो हर कोई जिक्र कर ही देता है, और मस्बत सोच के हामिल हो जाएं लोग। जो नेगेटिविटी है, और रादर देन ब्लेमिंग माई सेल्फ या कि मैं इसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ, हम हमेशा दूसरे को ब्लेम करते हैं। दहशतगर्द हैं तो किसका कसूर है? हमारा कसूर है। डॉलर स्ट्रांग है, रिश्तों की कदर कोई नहीं है।
मैं एक फितरा और कहना चाहता हूँ आपकी मुख्य से, बात यह है कि हमदर्दी या मदद ये नहीं है कि किसी भूखे को देख के हम उसे भाषण देना शुरू कर दें कि तुम ये करो वो करो वो करो तुम्हारी घुटन दूर हो जाएगी। भाषण ये है कि जिस तरह मेरे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, कि एक आदमी आया था तो उन्होंने उसे खाना नहीं बस उसे कुल्हाड़ा लेके दिया था, रस्सी लेके दी थी, उसे कहा था जाओ जंगल में लकड़ियां काटो और आगे बाजार में बेचो।
तो सर मेरा भी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मसाइल की निशानदेही नहीं, हमें हल के बारे में कौम को मोटिवेट करने की, लोगों को मोटिवेट करने की, सही और गलत बताना हमारा काम है, समझना आपका काम है। आप सोचिएगा कि ये सोशल मीडिया का हम कहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरी आपसे आज के प्रोग्राम के तवस्त से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जब तक कोई खबर को देखें आप उसकी रूट को जरूर ढूंढें, ये खबर जनरेट कहाँ से हुई, क्योंकि झूठी खबरें जनरेट हो जाती हैं। पीपल पुट वर्ड्स इन योर माउथ, दिस इज टेक्नोलॉजी। तो बस वो जिम्मेदारी मुझे और आपको अदा करनी है। समीला मलिक साहब आपको बहुत शुक्रिया, वक्त बहुत तेजी से गुजरता है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी।
आपको एक और खुशखबरी भी सुना दूं कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आपके साथ ये जो प्रोग्राम है तकरीबन से 40 हफ्ते होने को आने जाने, पता नहीं चला कि इतना जल्दी वक्त जो है आपके साथ गुजर जाएगा, 40 हफ्ते आपके साथ
जिंदगी।
और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखिए कि पहले प्रोग्राम को भी देखिए कितने लोगों ने देखा था, और कल का जो पिछले हफ्ते का प्रोग्राम को भी देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये दलील है इस बात की, हम अपने प्रोग्राम में आप और मैं दोनों मिलकर हम जो है एक हकायक और तल्ख सच जो है उसको सामने लाते हैं और दुनिया को बताते हैं, ढोल बजा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, सोई इंसानियत के सामने खड़े होके, चाहे हमारे हाथ छल छल ही क्यों ना होते हों, एक बता रहे हैं कि हक की तरफ आ जाओ। पीयूष की मुकरी का राज अल्लाह ताला हमें ये भी दे रहा है कि दो दिन के अंदर ही से 87,000 से ज्यादा लोग से देख लेते हैं।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आयत शुरू में भी ये थी कि अल्लाह ताला ने भी कुरान में लानत भेजी उन लोगों के ऊपर जो जुल्म करते हैं। इजाजत दीजिएगा अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी।
आपने अपनी वेबसाइट का जिक्र बड़ी मोहब्बत से किया, आपका हक है।
मैं हमेशा कहा करती हूँ मेरा 770 इज माय बेबी, आई लव 770। टोरंटो में मेरी कम्युनिटी की पहचान है, एंड ऑफ कोर्स अ वीक पीपल थिंक आर वुमेन आर वीक, बट नो, पाकिस्तानी औरतें आर द बेस्ट अराउंड द वर्ल्ड। हमारे मर्दों ने एज ए फादर, एज ए ब्रदर, एज ए हस्बैंड अपनी बच्चियों को जिस तरह रेज किया है, काबिले सताइश है। डोंट लिसन टू मलाला यूसुफ़ज़ई कि पाकिस्तान में शायद औरतों के साथ धड़नी घड़े में रख के उनको पाला जाता है। नो, नॉट लाइक दैट। इजाजत दीजिएगा नेक्स्ट प्रोग्राम तक, अल्लाह हाफिज़।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
आई खुशबू
कादी
दिवाली दी फूड बेसिक्स दे किचन्स ऑफ द वर्ल्ड दे नाल हुन हर किचन चो आएगी खुशबू, खुशबूदार नूर बासमती राइस दे नाल जो ने 599, क्रीमी ट्रसेले पनीर सिर्फ 379, ते डिलिशियस सीडर बीन्स सिर्फ 99 सेंट्स विच।
वाह,
आई खुशबू
नहीं
आ जाएगी। एट फूड बेसिक्स, ऑलवेज मोर फॉर लेस।
Doughbox, wood-fired pizza and pasta, the real Italian specialty pizza, the fresh garden salad bowl, dessert and kids menu. Build your own pizza with unlimited toppings for only $14.95 plus tax. Find us in Hamilton, Oakville, Mississauga, downtown Toronto. Call and place your order today, 289-389-2050. For menu and location, visit doughbox.ca. Download Dough app and earn points.
ऑटिज्म वाला हर बच्चा खास है और उन्हां दा परिवार भी। एरिनो किड्स इस गल नूं समझदे ने और एक विस्तारित माहौल दे विच वातावरण ऑटिज्म दियां सहूलतां देंदे ने। इस दे नाल ही परिवारां दे नाल कम करदे ने ताकि उन्हां दा बच्चा पूरी समर्थता दे नाल परवान चढ़ सके। साडियां सेवावां लैण वास्ते ब्रैम्पटन, मिसिसागा और ओकविल सेंटर्स नूं विजिट करो। एरिनो किड्स हर कदम ते तुहाडे नाल 20 साल तों, लेकिन पहला कदम है विजिटिंग aranokids.ca।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ।
जब एक फोन बजता है तो आप इसका जवाब देते हैं। जब धुआं या कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म बजता है तो क्या आप जानते हैं क्या करना है? ये जानने के लिए कि धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म्स क्या हैं और क्या मुख्तलिफ अलार्म्स हैं, उनकी आवाज़ों का मतलब क्या है। एक चहचहाने वाले अलार्म चिपरिंग अलार्म की आवाज़ का मतलब है कि आपको बैटरी या अलार्म को तब्दील करने की जरूरत है। एक बीपिंग अलार्म का मतलब है कि बाहर निकलें, बाहर रहें,